सुबह का वक्त था, रावत मेंशन, मुंबई। जब जानवी की आंखें खुलीं, तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने हैंडसम पति पर पड़ी, जो उसके सीने पर करवट लेकर सो रहा था, जैसे ये उसका फेवरेट पिलो हो। जानवी ने उसकी मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए गौर से उसके चेहरे को देखा। सोते वक्त वो बहुत मासूम लग रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। जानवी ने थोड़ा सा झुकते हुए उसके बालों को किस कर लिया और खुद ही मुस्कुराने लगी। कल रात का सफर उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। उसे लगा था जैसे हर चीज में उसे सेकंड ऑप्शन मिलता है, और भगवान ने अब तक उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, तो उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी से भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर शायद वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ जानवी के केस में हुआ था। अमर के रूप में उसे एक हीरा मिल गया था, जिसे बस उसे संभाल कर रखना था। जानवी को पता ही नहीं चला कब उसका वो हाथ बालों से निकलकर उसके चेहरे पर घूमने लगा। कभी वो अमर के होठों को छूकर देख रही थी, तो कभी उसके गाल को। फिर उसका हाथ अमर की दाढ़ी पर आ गया और उसकी आंखें छोटी छोटी हो गईं। ये दाढ़ी मुझे बहुत परेशान करती है, अभी देखो मेरे सीने में कैसे दबी हुई है, उसने हल्के गुस्से में कहा। इतना बोलकर उसने अमर की दाढ़ी को पकड़कर हल्का सा खींच लिया, जैसे उस पर अपना गुस्सा उतार रही हो, और इसी चक्कर में अमर की आंखें खुल गईं। उसने अपना चेहरा उसके सीने से निकालते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, बच्चे सुबह सुबह ही तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे? आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा कि आपको नींद आ रही है। आप एक काम कीजिए, उधर सो जाइए, मुझे उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, जानवी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली। उसने जैसे ही उठने का नाम लिया, अमर ने उसके कमर को और भी टाइट पकड़ते हुए कहा, नहीं, कुछ देर और मेरे पास रहो, उसके बाद चली जाना। उसने जैसे ही अपना चेहरा फिर से उसके सीने पर रगड़ा, जानवी ने कसमसाते हुए कहा, आपकी दाढ़ी सच में बहुत चुभती है, इसलिए मैं इसे पकड़कर खींच रही थी। इतना बोलते हुए उसने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाते हुए एक बार फिर अमर का चेहरा पकड़ लिया। ये देखकर अमर को हंसी आ गई, और उसकी इन बचकानी हरकतों से अमर की नींद भी उड़ चुकी थी। उसने गौर से जानवी के चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बच्चा तुम्हारे दुश्मन तो बहुत खतरनाक खतरनाक हैं, कभी मेरी दाढ़ी, कभी मेरी नजरें, कभी मेरी बातें। मेरा दूर रहना भी तुम्हें गलत लगता है, और मेरा पास आना तुम्हें तकलीफ देता है। मुझे तकलीफ नहीं देता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सुनकर जानवी ने जल्दी से उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहा। अमर ने उसके करीब जाकर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, सही में बच्चा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है। जानवी ने इधर उधर देखते हुए दो बार हां में सर हिलाया। फिर नजरें क्यों चुरा रही हो, अमर ने पूछा। वो कुछ नहीं, वो मैं तो भूली गई थी कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, जानवी ने कहा। इतना सोचते सोचते उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया, और अमर को फिर से हंसी आ गई। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, यू आर जस्ट अनबिलीवेबल, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी, जिसे खुद नहीं ख्याल रहता वो किस हाल में है, और वैसे मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, ये रात को तुम ही बोल रही थी ना। जानवी को याद आया रात को कैसे वो बेशर्म बन गई थी अमर को अपने करीब बुलाने के लिए, और उसने दांतों तले अपनी जबान दबा ली। उसकी इन मासूम हरकतों से मुस्कुराते हुए अमर ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मुझे तुम्हारे और करीब बुलाती हैं। इतना बोलकर उसने उसके होठों को अपने मुंह में भरते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनका दरवाजा बजने लगा। जानवी ने जल्दी से अमर को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अमर हटा नहीं, और दरवाजा लगातार ऐसे बज रहा था जैसे अभी तोड़कर कोई अंदर आ जाएगा, जिसे महसूस कर जानवी की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने अमर के सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। कुछ ही देर में अमर को महसूस हुआ कि जानवी को सांस नहीं आ रही है, और उसने उसके होठों को छोड़ते हुए उसके गाल पर वॉश करते हुए कहा, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ कच्चा। जानवी ने एक लंबी सांस भरी और फिर जल्दी से हांफते हुए बोली, आप पागल हो क्या, दरवाजा इतनी देर से बज रहा है और आपको किस करना है मुझे? अमर को दरवाजे बजाने वाले पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जानवी जल्दी से अमर को खुद से अलग कर उठी और अपने शरीर पर चादर लपेटे हुए बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही अमर ने अपनी पैंट उठाई और पहनते हुए दरवाजे तक गया। उसने गुस्से से दरवाजा खोला और बाहर निकालकर बोला, कौन सी आफत आ गई है जो दरवाजा तोड़ने पर उतारू हो गए हो? उसने बाहर देखा तो त्रिशा खड़ी थी, जिसे देखकर अमर के चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं त्रिशा ने जब अमर को शर्टलेस देखा तो एक पल के लिए उसकी नजर उसके एब्स पर टिक गई, पर अगले ही पल वहां जानवी के नाखूनों के निशान देखकर उसने घृणा से अपनी नजरें हटा ली और अपने मन में बोली, मैं इस लड़की को मासूम समझती थी और हमेशा मम्मा से छुपाकर उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और पकवान मंगवाती थी, और ये लड़की एक नंबर की चालबाज निकली। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया सिर्फ एक लड़की की वजह से। तो क्या तुम यहां मुझे सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आई हो? अमर ने उसे चुप देखकर गुस्से में कहा। नहीं, मैं तो जानवी से मिलने आई हूं। वो मम्मा की तबीयत खराब है, मल्होत्रा हाउस से कॉल आया था। तो मैं चाहती हूं जानवी भी मॉम को देखकर आए, मॉम को ज्यादा अच्छा लगेगा, त्रिशा ने जल्दी से कहा। वो मेरी बीवी है, मेरे बिना वो कहीं नहीं जाएगी। अगर उसे मल्होत्रा हाउस जाना होगा तो मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा, और तुम्हें अपनी मां से मिलना है तो तुम अकेली चली जाओ। वैसे ही मैंने सुना था मैंने तुम्हें यहां कैद करके रखा था, तो अब मैं तुम्हें छूते रहा हूं। जहां जाना है वहां चली जाओ। मैं तुम्हारा भला सोच रहा था, पर शायद तुम उसे लायक नहीं हो कि तुम्हारा कोई भला सोचे। कंप्लेन लिखवानी है समाज के खिलाफ तो वो भी लिखवाओ, अमर ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। त्रिशा, जो अमर के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, उसे जब पता चला जानवी उसके बारे में सब कुछ अमर को बता चुकी है, तो उसकी आंखों में गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। उसने मुंह खोला, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर अमर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैंने अपना बच्चा खोया है। उसका दुख क्या होता है ये कोई और कभी नहीं समझ सकता। मैं बस अपना दुख बांटने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों की शिकायत भी सीधा आपसे कर देती हैं। आइंदा से इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरी बीवी से क्या बोल रही हो। वो मेरी बीवी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि त्रिशा नाम की भी कोई लड़की यहां रहती थी, अमर ने त्रिशा की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। त्रिशा ने जब अमर की धमकी सुनी तो उसने डर से अपना सलाइवा निगल लिया और फिर धीरे से हां में सर हिलाते हुए बोली, हां, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि आइंदा से मैं जानवी से ऐसी कोई बात ना करूं। यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अब निकलो यहां से, और उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा मन करेगा मैं खुद बता दूंगा, अमर ने डेविल स्माइल के साथ कहा। त्रिशा ने हां में सर हिलाया और पैर पटकते हुए वहां से वापस कमरे में जाने लगी। ठीक उसी वक्त रावत मेंशन के सामने समर्थ की गाड़ी आकर रुकी और वो तेज कदम भरते हुए अंदर आया और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ जाते हुए त्रिशा के कमरे का रुख कर लिया। वहीं त्रिशा और माही एक दूसरे से बातें कर रही थी।
वो लड़की इतनी चालाक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने अमर को सब कुछ बता दिया जो हम दोनों ने उसे कहा, त्रिशा ने गुस्से से जलते हुए कहा। ये सुनकर माही की तो मानो जान ही निकल गई। अगर दीक्षांत को ये सब पता चला तो वो उसका जीना हराम कर देगा। क्या दीक्षांत सर को भी उसने सब कुछ बता दिया? उसने डरते हुए हकला कर कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता उसको कुछ पता है, पर अगर ऐसा ही चला तो बहुत जल्द उसको भी पता चल जाएगा, त्रिशा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ। अगर वो मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं कभी भी दीक्षांत सर से बचने के लिए इस घर में नहीं आती जहां जानवी की शादी हुई है। दूसरा, दीक्षांत सर मुझे इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि मैं जानवी से खातिरदारी करवाती थी। जैसे जानवी यहां की महारानी है, सब बस उसका ही ख्याल रखते हैं। उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। क्या बाकी इंसान नहीं है, जानवर है? माही ने भी जानवी पर गुस्सा करते हुए कहा। वो दोनों आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उन्हें जूतों की आवाज आई और त्रिशा ने माही को शांत रहने का इशारा किया। वहीं समर्थ ने बाहर से दरवाजा लॉक किया। कम इन, त्रिशा ने कहा। समर्थ ने एक धक्का देते हुए दरवाजा खोला और फिर माही को देखकर कहा, गेट आउट। माही तुरंत ही उठते हुए वहां से बाहर चली गई और समर्थ त्रिशा के करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ब्यूटीफुल को भड़काने की? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी इतनी केयर करती है और तुम उनकी जिंदगी नरक बनाना चाहती हो? तुम चाहती हो वो भाई को तलाक दे दे? क्यों, आखिर तुम्हें क्या मिलेगा उनकी जिंदगी हराम करके? त्रिशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने समर्थ के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश की, पर समर्थ का गुस्सा उस पर हावी हो गया था। उसने नहीं देखा कि त्रिशा को सांस नहीं आ रही है। त्रिशा की आंखों से जब आंसू निकले तब जाकर समर्थ ने उसके गले को छोड़ा। त्रिशा बुरी तरह हांफते हुए दो कदम पीछे हट गई और फिर गुस्से से बोली, तुम सुनना ही चाहते हो ना कि मैं क्यों उसकी जिंदगी हराम करना चाहती हूँ, तो सुनो। इसकी वजह से अमर जैसा अच्छा इंसान मेरी जिंदगी से चला गया। सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तुम लोग मुझे ज्यादा इसलिए परेशान करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं जानवी को परेशान करती हूँ, और फिर भी तुम पूछते हो कि मैं जानवी की जिंदगी क्यों हराम करना चाहती हूँ। सीरियसली, मैं अमर को पसंद करती हूँ, और तुम देखना, एक दिन मैं जानवी के हाथों से अपने अमर को वापस ले लूंगी। ये सुनकर समर्थ का जैसे दिल टूट गया हो। त्रिशा वो पहली लड़की थी जिसे समर्थ ने छुआ था, और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब पूरी जिंदगी त्रिशा के साथ बिताएगा। पर त्रिशा की ये बातें सुनकर उसका मासूम दिल जैसे हजार टुकड़ों में टूट गया। उसके गले में दर्द भराया, पर उसने उसे दर्द को छुपाते हुए दांत पीस कर कहा, खबरदार जो मेरी भाभी और भैया के बीच आई, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे उनको अलग करती हो। देख लेना कैसे करती हूँ और कैसे नहीं, त्रिशा ने भी उतने ही गुस्से में कहा। पहली बात तो मैं तुम्हें इस घर में ही नहीं रहने दूंगा, तो तुम कैसे उन दोनों के बीच आओगी। मैं आज ही कल्याण सिंह से बात करके तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समर्थ ने गुस्से से कहा। इतना बोलकर समर्थ तेजी से उस कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि उसे अब रोना था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे त्रिशा की बातें सुनकर। कैसे वो एक पल में उसका दिल तोड़ सकती है। टू बी कंटिन्यूड।